ओम शांति। एक सत्य बाबा की रचना, नई सृष्टि, सतयुगी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली कहलाती है, को राजधानी योग्य बनाने हेतु बाबा ने निमित्त स्वरूप जिन ज्ञान गंगाओं को आगे किया, उनमें से एक प्रमुख नाम सामने आता है, मृदुभाषी, अनवरत सेवा में संलग्न आदरणीय राज दीदी जी का। विगत 5 दशकों से बाबा के कदमों में कदम रख चलने वाली, बाबा की हर एक बात को अथॉरिटी के साथ सेवा करने की विलक्षण प्रतिभा आप में है। वर्तमान में आप दिल्ली मजलिस पार्क सेवा केंद्र एवं संबंधित अन्य 20 सेवा केंद्रों का कुशलता पूर्वक निर्देशन कर रही हैं। आपने जन जन तक ज्ञान गंगा बन परमात्मा का सत्य परिचय देकर साबित किया कि सेवा साधन से नहीं अपितु साधना व संकल्प शक्ति से होती है। आपकी लेखन कला, कविताएं व आलेख सेवा की हर डोर को बांधे रखती हैं। आप ग्राम विकास प्रभाग की दिल्ली जोन कोऑर्डिनेटर हैं। आपके ओजस्वी एवं अनुभवी वाणी से आज हम सभी लाभान्वित होंगे। आज का विषय है स्व उन्नति के लिए लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें। आदरणीय राज दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कैसा विचित्र न्यारा संसार है जिसमें हम बैठे हुए हैं। सभी के श्वेत वस्त्र, सभी की आत्मिक दृष्टि, सभी का ओम शांति बोलना, ओम शांति रहना, ओम शांति करना, ऐसा ज्ञान युक्त, अद्वितीय, अनोखा ये परिवार हर रीति से अलौकिक है, दिव्य है। इस लोक में ना ऐसा वेश मिलता, न ऐसा परिवेश मिलता, न सादगी में श्रृंगार मिलता, न दिव्यता मिलती। इस लोक में रहते एक नया अलौकिक संसार ये किसने बनाया, और कितने परम सौभाग्य की बात है कि हम इस संसार के अनन्य पुष्प हैं, इस दैवी परिवार के भारती हैं, और इस अलौकिक संसार के लिए भावे सुगंध भरने के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है। जिनको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, वो उस दुनिया को रिजेक्ट करके इस दुनिया में आ गए, और यहाँ उनकी कितनी वाह वाह हो रही है, कितनी महिमा हो रही है। हम सब ने इतनी उन्नति को कैसे पाया, कैसे हम इतनी रूहानी बन गई, शिव बाबा ने कैसे इस दुनिया को अलौकिक बना दिया, और भी सभी को बना रहे हैं, बनाते चले जाएंगे, ये सोचने की बात है। सबसे पहले बीज रूप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो कि अत्यधिक लौकिक थे, शरीर का नाम दादा लेखराज था, हीरों के बड़े व्यापारी थे, राजाओं के बीच में उठना बैठना था, पर बहुत धार्मिक थे और सात्विक आहार वाले थे। ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर का नाम दादा लेखराज था, इतने बड़े व्यापारी थे, सिंध के जाने माने, वह लौकिक से अलौकिक कैसे बन गए। उनमें परम पिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और उनकी दृष्टि, वृत्ति, आचार विचार, व्यवहार सब बदल गया। न केवल वो बदले अपितु उन्होंने अपने साथ हमें भी बदल दिया और हम भी अलौकिक बन गए। ब्रह्मा बाबा कोई अलौकिक परिवार में पैदा नहीं हुए थे, कोई दो दुनियाएं नहीं थी, एक तरफ रूहानी एक तरफ जिस्मानी, ऐसा नहीं था। लेकिन उसी जिस्मानी दुनिया को रिजुनवेट करके उन्हीं देह अभिमानियों को रूहानी दृष्टि वाले बना के और उन्होंने ऐसे संकल्प कराए, ऐसा हमारे सामने दृढ़ लक्ष्य रखा कि हम अलौकिक बन गए। तो क्या केवल इसी में खुश होना है या आगे और भी उन्नति करनी है? हमें तो बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, बाप समान बनो। समान बनने के लिए, सो उन्नति के लिए हमें क्या जरूरी है? आज हम इन बातों पर विचार विमर्श करेंगे। क्या चीज मुझे और आगे बढ़ाएगी? बहुत सी आत्माएं कहती हैं, दीदी हम अमृत वेले भी उठते हैं, डेली मुरली भी सुनते हैं, बाहर का भी हम नहीं खाते हैं, वस्त्र भी हम श्वेत पहनते हैं, पहले से बहुत अंतर हो गया है, पर ये पर क्या है? कौन सा ऐसा पर है जो हमारे उड़ने के पर काट देता है? हमें तो परे जाना है, परे ते परे परम धाम में। और हम आत्माएं एक पर में किस में उलझ गए हैं? आज हम उस पर विचार करें कि उन्नति के लिए क्या करें और आगे कैसे बढ़े। बाबा हमेशा कहते हैं कि अच्छा विद्यार्थी वो जो और आगे बढ़ने की दृढ़ संकल्प रखे। जो पाया जो मिला वो तो ठीक, और आगे बढ़ना है। इसके लिए हम सभी कहते तो हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु अपने तहे दिल से, अंतरात्मा से हम पूछें, क्या सच में तन मन धन हमने अर्पण कर दिया है? क्या सच में ये अवस्था हो गई है तेरा तुझको अर्पण? आज कोई चीज का नुकसान हो जाता है तो कितना मूड खराब होता है, कितना ढूंढेंगे, वैसे वो चीज याद भी नहीं होगी कभी, पर जब खो जाए तो उसकी सारी विशेषताएं याद आ जाएंगी। इतनी मुश्किल से इसे पाया था, इतनी अच्छी चीज थी, मेरे काम आती थी, ये था वो था, इतनी उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे हम जैसे वही मेरा संसार थी। और कोई पूछे क्या हुआ है आपको, कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो कुछ हो क्या गया? फिर हो ये क्या कि सूक्ष्म में मेरा उस प्यारी वस्तु से मोह था, लगाव था, जो मुझे पता नहीं था। और जब वो ओझल हो गई तब मेरी समझ में आया कि उसके बिना मुझे अपने हृदय का कोई कोना रिक्त लगता है, खाली लगता है। इसी तरह ये तो वस्तु की बात रही, व्यक्ति की ओर बढ़िए। किसी के बहुत प्रियजन का शरीर छूट जाता है तो कितना रोते हैं उस टाइम। ये भूल जाता है कि बाबा ने कहा दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। कितना हाय तोबा होती है, कितना हड़कंप मच जाता है उस टाइम के लिए। फॉर द टाइम बीइंग मुरली भी भूल जाती है, मैं नहीं कहती सभी की ऐसी स्टेज होती होगी, कोई उस टाइम भी याद रखते हैं बाबा को मुरली को, पर ये वाक्य याद रखना परिस्थिति में भी स्थिति बनानी, ये पॉइंट याद रहता है उस टाइम। अगर याद रहता है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि समय प्रति समय परिस्थितियां बहुत विकट आने वाली है और भी विकट आने वाली है, तो ऐसे के लिए हमें रूहानी सेना है, हमें स्वयं को किस तरह से तैयार करना है। और विशेष बात मुझे याद है कि जब आदरणीय दादी जानकी जी विदेश सेवा के लंबे टूर के बाद पहली बार दिल्ली में आई थी, उनका बड़ा क्लास था, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, विशाल टेंट लगे हुए थे और मैं जाके पीछे चुपके से बैठ गई। जो ही मैं बैठी तभी उनका उस टाइम ये महावाक्य चला कि जो भी आप में कला है उसको अलौकिक में बदलो, कला को समाप्त नहीं करो। किसी को अच्छा गाना आता है तो गाना बंद नहीं करें, ईश्वरीय गाएं। किसी को भोजन बनाना आता है अच्छा, ब्रह्मा भोजन बनाएं। किसी को व्यापार आता है तो ज्ञान रत्नों का व्यापार करें। जो भी कला जिसमें है उसको अलौकिक में लगाएं तो कई गुना बढ़ जाती है। ये बात सुनते ही एकदम मेरे अंदर धक सा हुआ कि तू तो कविता लिखती थी, कविताओं की एक बुक बनाई हुई थी, ऊपर फोटो बनाती थी पेन से फिर कविता लिखती थी। जब मैं ज्ञान में चल पड़ी मैंने उसको फाड़ के अंगीठी पे जला दिया और मैंने सोचा अब तो मैं ईश्वरीय बन गई हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, अब मेरा कविताओं से क्या लेना देना। बहन जी ने परिचय में कहा ना लेखन कला की बात कही तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा अभी इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो रूहानी हो गई हूँ, ईश्वरीय हो गई हूँ, ये पता नहीं था कि विशेषताओं सहित रूहानी बनना है। तभी मैंने दृढ़ संकल्प किया कि जो कविताएं पहले लौकिक में लिखा करती थी अब मैं ईश्वरीय अर्थ लिखूंगी, इसको अलौकिक में बदलूंगी, इस कला को अंगीठी में नहीं जलाना, कापी तो जल गई चूल्हे में लेकिन इस कला को समाप्त नहीं करना। तभी बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसा लिखवाते रहे करते रहे तो सभी ने पसंद किया और छपती भी रही। इस तरह से लौकिक को अलौकिक में बदला, लौकिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम में बदला, लौकिक भावनाओं को ईश्वरीय भावनाओं में बदला, दैहिक बातों को रूहानियत में कन्वर्ट किया, तो देखो बाबा ने हमें और आगे बढ़ाया। ठीक इसी तरह आप में किसी में बातचीत करने की कला होगी, वक्तृत्व कला होगी, भाषण करने की कला होगी, किसी में अच्छा लिखने की होगी, माताओं में किसी में सिलाई कढ़ाई की होगी, किसी में कुछ कला होगी, उन सब कलाओं को आप ईश्वरीय में परिवर्तन करो तो आप देखो ये संसार कितना प्यारा लगता है ही प्यारा, लेकिन इसमें प्यारे से प्यारी चीज अपनी विशेषता जुड़ जाती है, वो जब रूहानी हो जाती है अलौकिक हो जाती है तो आंतरिक सुखद अनुभूति होती है, अंदर में बहुत खुशी आती है। नहीं तो हम सोचने लगते हैं फलाने ने बहुत अच्छा बोला, फलाने ने ये कार्य बहुत अच्छा किया, मंच बड़ा अच्छा बनाया, भोजन बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। हर एक में कोई न कोई विशेषता है। हम भी दिव्य बन सकते हैं, बन ही गए हैं, और अपनी विशेषता को दिव्यता में कन्वर्ट करके हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के बाद जिन्होंने नहीं किया हो, इस प्रयोग को करके देखना, तो आपको बड़ी खुशी होगी। किसी को अपने आप से बातें करने की आदत होती है, बैठ के बहुत अतीत में चली जाती है, और उनको ये भी याद नहीं रहता मैं कहाँ बैठी हूँ या किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा सोचने लगते हैं। तो फिर ये सुनने को मिलता है, पुरानी बातों को भूल जाओ, खो क्यों गए हो, छोड़ो पुरानी बातों को, छोड़ो कल की बातें। उनमें से कई आत्माएं कहती है भूलता नहीं है, क्या करें, आज छुट्टी है, कल की बातें सोच लीजिए, खूब अतीत में चले जाइए, पुराने में चले जाइए। किस पुराने में? पुराने थे पुराने थे पुराने थे, पुराना क्या है? मेरा देव स्वरूप है। सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में मुझे मेरे परम पिता ने कैसा बना के भेजा था, मेरा कितना सुंदर रूप था, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, नेचुरल ब्यूटी थी, और कितने सुंदर जेवर पहनती थी। किसी को जेवर से प्यार होता है तो आर्टिफिशियल लेके आ जाती है, अधिक पैसा नहीं होता है तो, और उसमें भी कोई उसको असली समझ के अंगुली काट लेते हैं, ये शायद असली अंगूठी होगी। एक बार एक माता शहर के लिए जाया करती थी, तो बाइक पे दो लड़के आए, उसकी चेनी खींची और चले गए। अगले दिन जब फिर सैर कर रही थी तो वही चेनी मारी उसके मुंह के ऊपर, बोलते हैं नकली पहनती है क्या, असली की चाह में ले गए। तो शीर भी सजाना है तो नकली से क्यों सजाएं? तो अगर पुरानी ये याद आती है कि मैं तो कितनी अच्छी पहले मेकअप करती थी, मैं ये करती थी, तो सबसे अच्छी मैं तब थी जब मैं आत्मा देवी देवता थी, सूर्यवंशी थी, जब 16 कला संपन्न थी, सबसे अधिक चेहरे पे चमक ब्यूटी उस टाइम थी, और मेरे चारों ओर एक ऑरा होता था गोल प्रकाश, और कितने दास दासियां आगे पीछे, और कितनी सुंदर मेरी जीवन थी, विमान था मेरे पास। तो आप अगर अतीत में जाना चाहते हैं, पुराना भूलता नहीं है तो मत भूलिए, आज आपको छुट्टी है, पुराने से पुरानी बात याद कर लीजिए कि मैं देवी देवता थी, मेरा ये आदि स्वरूप था। तो आपके विचार भी लौकिक से अलौकिक में बदल जाएंगे। सो उन्नति के लिए जो लौकिक को अलौकिक में बदलना है, सबसे पहले अपने संकल्प बदलें। अगर मेरे संकल्प ईश्वरीय हैं, मेरे संकल्प खूबसूरत हैं, तो मेरा जीवन बहुत सुंदर होगा। तेरी खुशी और गमी का कौन जिम्मेवार, तेरे अपने ही संकल्पों का संसार। मेरे संकल्प मुझे उठाते हैं, मेरे संकल्प मुझे गिराते हैं। मान लीजिए कभी हमारे साथ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कुछ गहरी चोट लग गई, तो हम इतने दिलवर हो, इतना बाबा को याद करें कि डॉक्टर भी पूछे कि आपका चेहरा इतनी जल्दी ठीक हो गया, हाल पूछने आने वालों को हाल पूछने में ही संकोच हो, इसको तो कुछ भी नहीं है। क्यों? सबसे पहले मैंने संकल्पों में सोचा कि मैं आत्मा शिव बाबा की गोदी में हूं, और मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। इतने अच्छे संकल्प हम रखेंगे, ये पेपर तो आनी जानी चीज है, कौन सा स्टूडेंट ऐसे है जो बिना एग्जाम दिए आगे बढ़ सकता है? कोई भी नहीं। आप देखो यज्ञ में जितना हमारी दादियों में आत्मिक स्टेज है, उन्होंने कितना देह विमान को तोड़ा है। एक बार की बात है, शायद सिल्वर जुबली थी या गोल्डन जुबली थी, और सारी दादियां सामने बैठी थी, और जानकी दादी जी की आंख के ऊपर इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी, मुख जितनी बड़ी, और दादी इतनी निर्माणचित होके सामने बैठी हुई थी, पीछे पता चला आंख में कुछ लग गया था, उसकी पट्टी हुई है। जब मैं किसी कन्या को देखती हूँ कि उसको स्टेज पे आना है, या किसी कन्या क्या कुमार हो, भाई हो, माताएं हो, तो हम कितनी बार शीशा देखते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, ना खराब तो नहीं लग रही, किसी दिन थोड़ा चेहरा मुरझाया हो, कोई घटना घट गई हो, कहीं आज मैं नहीं जाती सामने, लोग क्या कहेंगे कैसी लग रही है, तुम्हें क्या हो गया है, लोग कहें ना कहें मुझे अपने आप को कुछ हो गया लगता है। सेम ही क्वेश्चन चलते रहते हैं अंदर, क्यों? मेरे अपने मन में संकल्प है कि आज मैं अच्छी नहीं लग रही, या आज ये हो गया वो हो गया, कहीं तो किसी ने ध्यान दिया हो चाहे नहीं दिया हो, पर हमारी दादियों ने कभी सोचा कि मैं कैसी लग रही हूं? सोचा कभी? तो मैं तुरंत उस बहन को वो फोटो दिखाती हूँ, देखो ये है आत्मिक स्टेज, इसको कहते हैं आत्मिक स्टेज, कि जिन्होंने सोचा भी नहीं कि आज मैं सभा में मत जाऊं, मैं नहीं जाती, कभी सोचा ही नहीं। अपनी इस सोच को भी हम अलौकिक बना दें, अगर हमने स्व उन्नति करनी है तो छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे हमने देखा, एक बार की बात है, पांडव भवन दिल्ली में गुलजार दादी जी ने मई महीने में मेला रखा, लू के दिन, और वो टाइम होता था जब कहीं एक जगह मेला हो तो सारा इंडिया क्या सभी सहयोग देते थे, आजकल तो एक सेंटर भी एक मेला कर लेता है। तो उन्होंने मद्रास से तो देवी देवताओं की ज्वेलरी आई, गुजरात से बैठी कराने वाली आ रही है, योग शिविर पर्दे नए आ रहे हैं कहीं से, इतना सुंदर सब कुछ अजमल खान पार्क में सज गया, और सबके मन में एक ही बात थी कि इनको कहां से पेपर आना है, इनको थोड़ी कहीं से पेपर आना है, ये तो इतनी महान हस्ती है। लेकिन और गृह मंत्री ने आना था उद्घाटन से ठीक 2 घंटे पहले, घटाटोप अंधेर छा गया और गहरे काले बादल जाने कहां से इंतजार कर रहे थे कि मेला सजे रमाए, ऐसे लग रहा था, और इतनी तेज बारिश दिन के टाइम भी हाथ को हाथ नहीं सुझाई देवे जैसे गहरी रात पड़ गई हो, और झमाझम बारिश, सारे सफेद पर्दे मिट्टी में धराशायी हो गए, मॉडल्स बिल्कुल खराब हो गए, हर चीज ऐसी हो गई जैसे कि पानी में मिट्टी में चीज में अंतर ही न लगे। तो भी मैंने देखा उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। हम तो घबरा जाते हैं ना, जब हम ठीक हैं, हमारी चल रही है और हमारे अनुसार सब हो रहे हैं, हम परम योगी हैं, पर जब ऐसी घटना घट जाती है तब हमारी क्या हालत होती है। तो तब पांडव भवन के बरांडे में दीप दान रख के और वहां पे उद्घाटन किया गया, और गृह मंत्री को लाया गया, और वहां पे बहुत अच्छा सारा प्रोग्राम हो गया, और म्यूजियम के कमरे में ले जाके म्यूजियम दिखा दिया। जो ही गृह मंत्री जी रवाना हो गए, उद्घाटन हो गया, त्यों ही सूर्य देवता मुस्कुराने लगे। पहले सोचा होगा देखते हैं कैसे होता है उद्घाटन, बादलों ने दिखा दिया हम बहुत कुछ हैं, पर तब फिर धूप निकल आई, बहुत अच्छा वातावरण हो गया। तब हमने देखा, खैर चीजें तो दोबारा बना ली गई पर पेपर किसी को छोड़ता नहीं है। कहां से इनको पेपर आएगा? उनको पेपर ऊपर से आ गया। कहां से आया पेपर? ऊपर से आ गया। ऊपर वाले पे क्या, प्रकृति पे क्या जोर है। लेकिन इतनी घनी परिस्थिति में भी कितनी अच्छी स्थिति उन्होंने रखी। इससे पता चलता है कि मुझ आत्मा की उन्नति कितनी हुई है। अगर हमें 100 उन्नति करनी है तो हमें संबंधियों को भी अलौकिक दृष्टि से देखना होगा। अगर उनको हम उसी दृष्टि से देखते हैं तो हम उन्नति को नहीं पा सकते हैं। ऐसे में अगर हम ये भी समझें कि परिवार मुझे सेवा के लिए मिला है और ये भी बाबा का प्यारा परिवार है, इस परिवार को भी मैंने रूहानी पालना देनी है, मैं निमित्त हूं, ऐसा सोचने से हमारे में शक्ति आ जाती है। और स्वोन्नति के लिए एक बात जो घर गृहस्थी में रहते हुए बातें सामने आती हैं, उनमें ये भी होता है कि रस्में करनी है, त्योहार करने हैं तो हम कैसे करें। उनको भी उस समय आप जैसे पार्ट बजा रहे हो, किसी को घर में ही शादी है घर में, तो एक होता है बहुत सज के दिल से रुचि से सजावट करनी अपनी, दूसरी बात होती है कि पार्ट बजाने के लिए ऊपर से आपको ऐसा रूप रखना पड़ा। उस टाइम हम ये समझें कि इस समय भी मैं सबको ऐसे दिखाई दूं जैसे मैं रूहानी फरिश्ता हूं। मुझे याद है एक बार हमारी स्टाफ की कुली की बेटे की शादी थी, मैं वहां चली गई इसी व्हाइट ड्रेस में। मैं कहीं कुछ खाती नहीं थी तब, तब भी नहीं खाती थी घर में जब थी, लेकिन उनके घर में गाय थी, गाय का दूध लेके आई वो। तब तक मेरे विचार इतने परिवर्तित हो गए कि मैं सोचने लगी तुमने कौन सी बेटी का ब्याह करना है, तू यहां आई किस लिए है, जरूरत क्या थी आने की, तुम्हारी कोई घर गृहस्थी नहीं, तुम्हारा कोई लौकिक परिवार ऐसा नहीं, क्या जरूरत थी। मैं इतनी दृढ़ संकल्पी हो गई कि मैं उठ के चल दी। वो बोलती है बांस से पकड़ के, क्या हो गया कि मुझे जल्दी है, थोड़ा सा दूध ले लो, मुझे पता है बाहर का नहीं खाते हो, कि मैंने नहीं लेना तो नहीं लेना। वो दिन आया, हमने ये दृढ़ संकल्प कर लिया ऐसे माहौल में जाना ही नहीं है। कोई ऐसे चल पड़ते हैं माताएं, खासकर फलानी की फलानी की फलानी की शादी है, अरे तुझे उसमें क्या करना है, पार्ट बजाओ ना। लौकिक को जब तक हम अलौकिक में नहीं बदलते हैं, सारा दिन प्रैक्टिकल में बाबा मेरे साथ है, मेरा हाथ और साथ उसके हाथ में है, उसका हाथ साथ मेरे हाथ में है। देखो मैं आपको बात सुनाऊं, जब ब्रह्मा बाबा के लिए ये प्रत्यक्ष हो गया कि प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका जो बेटा था बड़ा, वो बहुत अच्छी तरह से पला हुआ उस माहौल में, जब वो एक बार वहां आया तो देखा सबकी नजरें बदली हुई है, अपना घर समझ के, मेरे बाप का घर है जैसे, और वो किसी भी कोई चीज चाहिए तो दादी कहती है ड्यूटी वाली से पूछो वो देगी, उससे पूछा वो कहे उससे पूछो, उसको अपने ही घर में ऐसे लगा जैसे ये मेरा घर नहीं है। उसके मन में जो थोड़ी भी रग थी कि ये मेरा पिता ही ने बनाया है, मेरे पिता ही इस यज्ञ का रचयिता है, या ये सब मैं इस घर का बाती हूँ, वो उसके मन से बिल्कुल निकल गया, क्योंकि सारी दादियों की दृष्टि एकदम बदल चुकी थी और पहले की तरह बुलावे, पहले की तरह कहीं भी हाथ डाल देवे, कुछ भी ले लेवे, कहीं भी चला जावे, ऐसा कुछ नहीं था। पहला परिवर्तन बाबा से हुआ, जो हमारे सामने सैंपल था, जिन्होंने लौकिक को अलौकिक में बदला। ओम मंडली बना के बाबा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया और माताओं बहनों की ट्रस्ट बनाई और अपना उसमें लगाया, जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख के और करें। बाबा ने सबसे पहले हमें करके दिखाया। जब उनका बेटे ने देखा कि जो भी चीज चाहता हूं, जिधर भी जाना चाहता हूं, एक कायदा है, एक रोक लग गई है, और हर कोई कहता है फलानी दादी से पूछो, उससे पूछो, उसको बड़ा अच्छा लगा। तब प्रकाशमणि दादी ने उसको अपने पास बुलाया कि अच्छा तुम्हें मैं देती हूँ। तब उसको इतनी रूहानियत फील हुई, दोबारा उस दृष्टिवृत्ति से वो कभी नहीं आया। फिर आ गए, अभी 18 जनवरी को आते हैं, सारा अब यज्ञ को समझ चुके हैं, लेकिन ये शुरू शुरू की बात है, एकदम यंग थे जब, पहली पहली बात है। हर बात में बाबा ने लौकिक को अलौकिक बना के दिखाया। इसी तरह से बाबा ने जो भी ऐसी विधियां सिखाई कि कोई भी आत्मा अपने को ये नहीं समझती थी कि मैं ना काबिल हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। एक बार मैंने देखा, बहुत पुरानी बुढ़ी सी माता छोटे छोटे टुकड़े कर रही कागज के, बैठी, कितने कागज बना दिए उसने, समय को सफल किया। तो मैंने पूछना चाहा कि किस लिए कागज काट रही है। अगले दिन देखा, हम सबको गुलाब जामुन की टोली मिली, उसी कागज में रखी हुई मिली। छोटे से कागज के टुकड़े का भी कितना महत्व है। तब मुझे अपने आप जवाब मिल गया कि वो जो कागज काट रही थी, इसलिए काट रही थी। इसी तरह साबुन होता था कपड़े धोने का, उसको बैठ के चूरा बनाती रहती थी, क्योंकि तब यज्ञ में इतने साधन नहीं थे और उसको उबालने में मेहनत कम पड़ेगी, इतनी भट्टी लगेगी, इतने बाबा के बच्चों के कपड़े धुलेंगे। तो बाबा ने कैसे चीजों का सदुपयोग सिखाया। लेकिन आज आत्माएं घर में तो सब कुछ सोचती हैं, मैं साबुन की भी बचत कर लूं, सरफ की भी बचत कर लूं, मैं ये भी कर लूं, लेकिन यज्ञ में आके हम बहुत लेविशली इस्तेमाल करते हैं। इतना ही लेवे जितना हमने खाना है, अधिक ले लेते हैं, खाया जाता नहीं, फिर कितना फेंक के जाते हैं। क्या इससे यज्ञ का बोझ हमारे पे नहीं चढ़ता? चढ़ता है ना। इन अपनी आदतों को जो आप घरों में बचत के लिए, घर चलाने के लिए यूज करते हो, कैसे हमने मित्रवेता से थोड़े में थोड़ा खर्च करके अधिक कार्य करना है, उन्हीं कार्यों को, उन्हीं बातों को आप अलौकिक में भी समझो। एक बहन ने दूसरी को कहा, मेरे को तेल दे दो नारियल का। उन्हें बोला कि अभी तो दिया था, शैंपू भी दे दो, ये भी। तो बोलती, तेरे घर से जाता है क्या, दे देना। अब आप सोचिए, जब ये शब्द कहा गया, तो मेरे घर के प्रति मुझे दर्द है, अगर मेरे घर से जाए तो मुझे दर्द है, और जो कह रही है वो यज्ञ समझ के कह रही है। यज्ञ को भी अपना घर समझे। यज्ञ को अपना घर समझना इस बात में नहीं है कि जो चीज मर्जी जहां से बिना पूछे उठा ले, इन घर की तरह दर्द रखे, घर की तरह हम उसकी सफाई रखें, उसको यूज करने का तरीका रखें, हर चीज का। इसमें भी अगर हमारे में अलौकिकता आ जाती है, एक बारी की बात है कि जब पार्टी चली गई तो मैं गाड़ी में बैठी थी, एक माता ने छोटी केन दूध के भर के ली हुई, तो दूसरी ने कहा कि इतना सारा दूध किसे ले आई है यज्ञ से, कहती है वहां बहुत सारा था, कितना आता है क्या करेंगे, मैं पहुंचूंगी मेरे पोते पोती पियेंगे। तो कहा वो जो आता है तो गेस्ट भी तो इतने आते हैं, बाबा के बच्चे भी तो कितने आते हैं, वो क्या सब तेरे लिए है? उस टाइम हमारे सभी आत्माएं ऐसी नहीं है, बहुत महान आत्माएं भी हैं जो ऐसा कभी नहीं सोचती हैं, अच्छे तरीके से चलती हैं, नियम कायदे पे चलती हैं, ऐसी आत्माएं भी होती हैं। लेकिन जो आत्माएं इस तरह के कर्म करती हैं परमात्मा दर पे आके और पुण्य बनाया या पाप बनाया हमारे ऊपर बोझा चढ़ा ना, इसमें भी हम ऐसा समझ के चले कि हम अपने घर में भी लौकिक को ये समझे ये ईश्वरीय यज्ञ है, और यहाँ पर समझे जैसे घर में हम नियम कायदा रखते हैं ऐसे यहाँ भी नियम कायदे पे चलना है। बहुत बार मैं देखती हूँ यहाँ हॉल में भी बहुत भीड़ है, बहुत बैठे हुए हैं, बाहर पार्क में देखो तो वहां भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, बाजार में भी बहुत सारे शॉपिंग कर रहे हैं, जिधर देखो उधर ही एक संसार है। और ये जो क्लासेस होती हैं, जो ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, अमृत पिलाया जा रहा है, ये आपको मार्केट में मिलेगा? कदापि नहीं। पार्क की ठंडी हवा तो फिर भी खा सकते हैं, लेकिन जो बातें बाबा के यज्ञ की हमें सुनने को मिलती हैं, जो हमें दिल में अंदर में भर के बादल ले जाने चाहिए और जाके हमें वर्षा करनी है। इसी तरह से अगर किसी को बहुत अच्छा समझाना आता है तो अपने आसपास के सभी को इकट्ठा करके, हमने देखा अभी हमारी वार्षिक मीटिंग हुई थी उसमें गुजरात की बहन ने दिव्य नगरी बसा दी झुग्गी झोंपड़ी वालों की सेवा करके। कितने गंदे तरीके से वो रहते थे, कितना अपशब्द बोलते थे, खाने का ढंग नहीं था, तो उनको भी बाबा के बी के बच्चे बना दिया। वो भी आत्मा के गीत गाने लगे, वो भी शिव बाबा की महिमा करने लगे। तो इसको क्या कहेंगे, जो समझाने की कला उस बहन में थी, उसने एक ग्रुप तैयार किया भाई बहनों का और उन्होंने उनके प्रति प्रयुक्त किया इस चीज को, झुग्गी झोंपड़ी वालों से नफरत नहीं करी। अगर हम घृणा करते हैं, इतने गंदे हैं, इनको बैठना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो ऐसे तो बदलेंगे नहीं। अगर हमने उनको ईश्वरीय भाषा सिखा दी, बोलना सिखा दिया, उनकी जीवन श्रेष्ठ बना दी, तो आप बताइए जब उनको परमात्म दर्शन हो गए, उनको योग की अनुभूतियां होने लगी, तो आत्माएं कितना ना दिल से दुआ देंगी। इसी तरीके से कोई अच्छी ड्रेसिंग करना जानते हैं, कोई और कार्य अच्छा जानते हैं, हम सब यज्ञ वश मिलके इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। ये गीत हर टाइम दिल से निकलना चाहिए, हम सब यज्ञ वश मिलके इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। हम घर को सफल बनाते हैं, बढ़िया तरीके से जमाते हैं, और हम इकोनॉमिकली चल के बैंक बैलेंस भी बना लेते हैं, पैसा भी जमा कर लेते हैं, लेकिन हम सभी अपने पुण्य संकल्पों की कमाई श्रेष्ठ पूंजी पुण्य कर्मों की कितनी जमा की है, क्या उस बैंक बैलेंस को कभी देखा है? क्या हम अपने में ही खुश रहते हैं? कई बार हम देखते हैं कि हम अपना उसी को समझते हैं जो ब्लड कनेक्शन है, या जैसे ज्यादा मेरी क्लास की है, क्लासमेट है, या मेरी फ्रेंड है, या मेरी जानकार है, उसके लिए चीज भी ज्यादा लेके रख लेंगे। भाई तुम तो एक बार ले गए हो, दोबारा टोली लेने कैसे आ गए? अंदर में है, मैं उसको खिलाऊंगी। शुभ भावना है ना? क्या ऐसी शुभ भावना सर्व के लिए नहीं रख सकते? इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लिए टोली ली तो एक पोटली पूरी गठरी बांध के सर्व के लिए भी ले जानी, ये नहीं कहना चाहती मैं। मेरा भाव ये है कि कोई भी अच्छा कार्य करने की शुभ योजना, उसके लिए एक समय देना, शक्ति देना, संकल्प देना, अपना कुछ लगा के दूसरे का कुछ बनाना, ये भी एक आगे बढ़ने का बहुत बड़ा साधन है। आगे बढ़ने के लिए हमें ये अपने मन में देखना चाहिए कि मेरे में, मैं जब आई थी तो ये बात मेरे में थी। सब कहते थे तुझे गुस्सा जल्दी आता है या ये था, अब कहाँ चला गया? बोलते हैं कफूर हो गया। कपूर उड़ता है, गुस्सा भी उड़ता है। कैसे कफूर हो गया? उड़ कैसे गया? रूहानियत में उड़ गया, बाबा के प्यार में ने उसका स्थान ले लिया। और जाने कब मेरा जीवन बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। जैसे आपके सामने घर में बच्चा होता है, देखते देखते धीरे धीरे बड़ा हो गया, जो कई साल बाद संबंधी रिश्तेदार आएगा वो कहेगा ये तो बहुत बदल गया, ये वो है छुटका सा, इतना बड़ा हो गया। ऐसे अपने आप पता नहीं चलता जो रोज देखते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें भी ये दूसरे जो कई समय बाद देखते हैं कि अरे आप तो बदल ही गए हो, आप तो रहे ही नहीं, आप पे तो बहुत चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है? वही नाक नक्श है, वही आवाज है, वही शरीर है, वो चेंज बयान नहीं कर सकते। वो चेंज उनको समझ में नहीं आता, पर कुछ लगता है, कुछ कुछ है। इसी तरह से ये चेंज तब आता है, रूहानियत आ गई, जीवन में सोचने का तरीका बदल गया, जब हम हर टाइम बाबा को साथ रखते हैं, नजर नहीं आते ये आसपास। ये गीत मुझे तो बहुत प्रिय लगता है। हर टाइम जैसे साये की तरह बाबा हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बात हम और ध्यान में रखें, 129 में के लिए ये अत्यावश्यक है, आवश्यक ही नहीं अपितु तो अनिवार्य है, क्या बहुतों की मत नहीं सुने। जब हम बहुतों की मत पे चलते हैं तो उस टाइम बहुत ऐसे हैं जो दूसरों के अकॉर्डिंग चलने लग पड़ते हैं, सोचने लग पड़ते हैं बात तो इनकी भी ठीक है, सोचना चाहिए। क्या परम पिता परमात्मा से बढ़ के कोई बात उन्हें कह सकते हैं? श्री मत के आगे मानव मत क्या चीज है? कितनी भी बड़ी मत हो, गुरु मत होगी, शिक्षक मत होगी, बिजनेस मत होगी, लोग चलाने की मत होगी, और ये सारी मतों से सर्वोपरि है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है श्री मत। श्री मत पे हम चल पड़े तो किसी और मत की जरूरत कुछ भी नहीं। कोई भी बात हमें कोई राय देता है, हम उसको बाबा के विचार कैसे हैं, इस बारे में मुरली क्या कहती है, मेरी गाइडलाइन मुरली है। अगर कुछ देखने में स्थूल में हानि भी लगती हो, लेकिन अंततो गत्वा लास्ट में उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया होता है। बाबा की मत, पवित्र मत, ज्ञान की मत, देवता बनाने की मत, ऊंचा उड़ाने की मत, उसके आगे कौन सी बात है जो मुझे भा गई। हमें तो कभी किसी और की बात ऐसी बात ही नहीं, जो बाबा ने कहा वो सिरमाथे मानी माथे। जो श्री मत को मेन मानते हैं ना, टैली कर लेते हैं उसे, मुरली से टैली कर लेते हैं, वो कभी जीवन में हार नहीं खाते। हमेशा ये सोच के रखो मुझे फेल नहीं होना। येन केन प्रकारेण, जैसे तैसे करके मुझे सारी मतों से ऊपर उठ के ईश्वरीय मत को कस के पकड़ लेना है। ये मेरे लिए लाठी है, सहारा है। और दूसरी बात, हर बात दूसरी लगती है, कितनी बातें हमने सुनी है, इसलिए कि इस विषय में हमें और विचार करना है कि जब सेवा सामने आती है तो सेवा के आगे कोई भी चीज कुछ भी नहीं है। मौत भी आई तो टल जाएगी। आज जब मैं सुबह एवर हेल्दी हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर कहती है आज तो आपकी क्लास है, इस हालत में आप क्या करोगी। तन चल ही नहीं रहा था कुछ भी किसी भी तरीके से। तो हमने एक ही बात कही, बाबा जाने। तो जब हम ये संकल्प करते हैं मैंने ये कार्य करना है, मैंने करानी है, मेरे द्वारा होना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं मैं छिप जाऊं, बाबा आप प्रकट हो जाओ, आप मेरे सामने हो, आप जानो आपका काम जाने, तो कार्य हुआ ही पड़ा है। एक आप बीती सुनाती हूं। एक बार की बात थी कि अजातपुर मंडी के सामने ही दिल्ली में मजलिस मार्ग में सेवा केंद्र है, कोई माता देखती हुई आ गई, आके बोलती है हमारे भी गांव में सेवा करो। मैंने उसकी बात गांठ बांध ली, जाके देख भी आई, कहा ठीक है शिवरात्रि का कार्यक्रम करेंगे पक्का, निश्चित। पक्का माना पक्का, हमारे अंदर ये बात नहीं है कि कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, किया थोड़ी जाता है, कहना है तो करना है। तो उसको कहा कि तुम दरी बिछा के रखना, टेबल ला के रखना, ये सब काम करके रखना। हम वहां गए तो कुछ भी नहीं हुआ पड़ा था, कुछ भी नहीं था। हमने उस माता को बुलाया, कहा माता जी आपके घर में दरी तो होंगी, बड़ी मोटी दरी होती है, गांव वाले उसको खरड़ बोलते हैं। तो यहाँ वो है, मैं कहा वो बिछाओ। आप बैनर भी हम नहीं लेके आए थे, शुरू शुरू की बातें हैं, स्कूल से छुट्टी हुई थी और एक बच्चे को बुलाया, कहा तुम अपना स्केल फुट्टा हो तेरे पास और पेंसिल दे दो। माता जी को कहा 2.5 मीटर कोरा कपड़ा सफेद लाके दो। बोले आई, हमने वहीं पर जो पीपल के पेड़ के नीचे प्लेटफॉर्म होता है थड़ा, वहां पे उसको बिछा कर स्केल से बॉर्डर लाइन बना दी और अंदर लिख दिया, याद नहीं कौन सी त्रिमूर्ति शिव जयंती थी तब, 40वीं थी या 42वीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती लिख दिया। और माता को कहा कि आटा घोल के मांड बना के ले आओ। बहने कहती है दीदी क्या करोगी इनका, तब मैं दीदी भी नहीं थी, बस छोटी कन्या मेरे पास कोई थी नहीं, मैं ही सब कुछ करने वाली थी, मुझे ही झाड़ू लगाना है, मुझे ही बैनर बनाना है, मुझे स्टेज बनानी है, स्टेज में बैठ के भाषण भी स्वयं ही करना है, ऐसा था। फिर भी एक आध जो थी, मैंने कहा देखते जाओ क्या करती हूँ। उस पेंसिल के ऊपर वो मांड वाला आटा लगा दिया, बच्चे को चढ़ाया मुंडेर पे, पेड़ की कोंपल नन्हे नन्हे पत्ते तोड़ लाओ, पत्ते तोड़े और गोंद के ऊपर लगाए हाथ से और बन गई बाउंड्री, बेल बन गई बड़ी सुंदर, चिपका दिए उसके ऊपर। अब अंदर कैसे लिखें, सामने मकान बन रहा था उसका रेड कलर का, बदरपुर पड़ा था, अंदर भी गोंद से लिख के वो बदरपुर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे हाथ से यूं कर दिया और लाल रंग के अक्षर बन गए। 10 मिनट के अंदर बैनर तैयार हो गया और हमने पेड़ की टहनियों से बांध दिया और टेबल वो ले आई थी घर से। अब मेरे साथ तब अमिता बहन जी होते थे, उनका शीर छूट गया है, बड़े बहन जी बुजुर्ग थे, वो बना दिए अध्यक्ष और कन्या गीत गाएगी, हम शिवरात्रि का रहस्य सुनाएंगे, प्लानिंग कर ली। लेकिन वीआईपी कहाँ से आएगा, तो माता जी को पूछा इस गांव का प्रधान जी कौन है, तो अपनी हरियाणी भाषा में कहती है मेरा ही तो घर वाला प्रधान जी है। मैंने कहा ठीक है तो उसको बुला लाओ, तो सोया पड़ा है कि जाओ जगाओ। तो हम खुद ही चल पड़े, कहती मैं नहीं जाती आप ही जगाओ। तो एक प्रधान जी और उसको मिलने आए हुए थे, दोनों बैठे हुए थे, हमने उनको कहा बाबूजी आप आओ, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बाबूजी आ गए, बाबूजी के मित्र भी आ गए, जैसे हम ऐसे हमारे मित्र, प्रधान जी के मित्र प्रधान जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। उन्होंने ही कह दिया हमारे गांव में सेवा केंद्र होना चाहिए। और आज वहां पर बहुत अच्छी सेवा हो रही है, 3-3 बहनें रहती हैं, सर्टिफिकेट मिल चुका है और भरपूर क्लास है, और क्लास भी आई हुई है मिलने के लिए। अगर मैं ये सोचती यहाँ तो कुछ करके ही नहीं रखा है, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, माइक हम ले गए थे, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, लेकिन किस कारण से, जो मैं ये नहीं कहती मैंने किया, बाबा ने जो दृढ़ संकल्प हमें दिया ना, उस कारण से हुआ। करण करावन हार बाबा है, इन बातों से भी उन्नति होती है। कई बार हम प्रोग्राम रखते हैं, किसी की ड्यूटी लगाते हैं, वो माताएं भाई आते ही नहीं है, हम उनको पूछते हैं आप आए क्यों नहीं, कहते हैं सोचा तो था पर क्या करें मेहमान आ गए, मेरे सिर में दर्द हो गया, ये हो गया वो हो गया, कई कारण सुनाते हैं। हम तो मेहमान को भी साथ लेके चल पड़ते हैं, आइए आपको हम और सुपर मेहमान दिखाते हैं, उनको लेके आ जाओ। एक बार अगर कोई दिल संकल्प किया है कि सेवा मुझे करनी है, पीछे मुड़कर नहीं तकना, पक्का अंडरलाइन कर लो अपने दिल में, तू एक कदम चलेगा वो 1000 कदम तुम्हारे साथ है। ये पक्का प्रैक्टिकल जीवन में सोच के देखो। मोस्टली आत्माओं को आदत पड़ गई है अच्छा सुनना है, अच्छा कहना है, करने के टाइम पे बड़ी मजबूरियां सामने आ जाती हैं, लेकिन मजबूरी को मजबूती से करना है, झेलना है। मजबूती है, दृढ़ता है, तो सब चीजें बालू के रेत के टीले की तरह है, कुछ नहीं कर सकते। आप सबके भी जीवन में कईयों के ऐसे अनुभव होंगे, जब सेवा करते हैं सेवा का मेवा मिलता है, सेवा में कभी पीछे पग नहीं रखना चाहिए, किसी से डरना नहीं है, अच्छे कार्य में बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधा कोई लगे यहां बाधा है मेरे आने में, मजा तो तब है, बाधा ही झुक जाए, माया आए और वो देखे उसको अंदर आने का कोई प्रवेश द्वार ही न मिले, उसके लिए बाधा बन जाए अंदर आना, इसको कहते हैं सेवा का दृढ़ संकल्प। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम थोड़े में खुश नहीं हो जाएं, जो हम हैं बहुत अच्छे हैं, जैसे आए थे उसकी अपेक्षाकृत बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है, बाप समान बनना है। हमें जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं वो तो हम बड़ी अच्छी तरह प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर में कोई ऐसी बातें हैं जो कमियां दूर करनी चाहिए उनको हम छुपा लेते हैं। उनको छुपाना नहीं चाहिए, उनको ही दूर करना है। बाबा के आगे अर्पण करके करते चलो, करते चलो, करते चलो, आप देखो बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी, करके देखना। तब ये समझना कि मेरी फतह हुई पड़ी है, क्योंकि शिव बाबा अजय है, उसको कोई नहीं जीत सकता। पांच विकार तो बाबा ने कहा ना, उनको अपने साथी बना लो, खेल बना लो। ये तो एक जैसे खेतों में फसल होती है तो पंछी आ जाते हैं, पंछी उसको ना खाएं, उनके लिए कनकोए तैयार कर देते हैं। ये माया हमारे लिए डरावने हैं, कुछ भी नहीं, हमारी विजय हुई पड़ी है, ऐसा सोचेंगे तो स्व उन्नति है ही है। ओम शांति।